السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين. हम सब इन दिनों में इस कोशिश में कि किसी तरह अल्लाह ताला को राज़ी कर लें, अल्लाह ताला की मोहब्बत को पा लें, और हर एक के दिल में ये ख्वाहिश ज़रूर होती है कि अल्लाह ताला मुझे पसंद कर ले। मैं तो अल्लाह से मोहब्बत करती हूँ, अल्लाह ताला मुझे अपना महबूब बना ले। तो कैसे हमें पता चले कि मेरी क्या वैल्यू है अल्लाह ताला के नज़दीक, क्या वो मुझसे मोहब्बत करता है? यूं तो अल्लाह ताला अपनी तमाम मखलूक से मोहब्बत करता है, जिसको भी उसने पैदा किया है। ख़ास तौर पे इंसान को उसने अपने हाथों से बनाया, तो अल्लाह ताला उससे मोहब्बत का ताल्लुक़ रखता है। मगर कुछ लोग ख़ास होते हैं जिनसे ख़ास मोहब्बत होती है। जैसे आपको बहुत सारे लोगों से मोहब्बत है, लेकिन अपने करीबी लोग, अपने वालदैन, अपनी औलाद, अपने बहन भाइयों से ज़्यादा मोहब्बत होती है। इसी तरह अल्लाह ताला की कुछ लोगों के साथ ख़ास मोहब्बत है, और हम सोचते हैं कि वो कोई बहुत बड़े बड़े औलिया ही हों तो उनसे अल्लाह ताला इतनी मोहब्बत करता है, और हमसे कैसे मोहब्बत कर सकता है? तो ऐसा नहीं है। हमें अगर तौफीक मिल जाए कुछ काम करने की, तो उन कामों के ऊपर भी बशारत है कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों से मोहब्बत करता है। इसी तरह बाज निशानियां ऐसी हैं जिनसे पता चल जाता है कि अल्लाह ताला इस बंदे से मोहब्बत करता है, इसको पसंद कर लिया उसने। तो आइए देखते हैं कौन सी वो निशानियां हैं या कौन से वो आमाल हैं जिनसे पता चलता है कि अल्लाह ताला को इस बंदे से मोहब्बत है, और क्यों ना हम भी वो आमाल अपना लें, उनको करने की कोशिश करें। तो पहली बात जिससे हमें मालूम होता है कि अल्लाह ताला किसी से मोहब्बत करता है, वो ये कि अल्लाह ताला उसको ईमान की नेमत से नवाज देता है। जिसको ईमान हासिल हो गया, समझ जाएं अल्लाह ताला इसको ज़रूर महबूब रखता है। किसी को माल मिल जाए, किसी को दुनिया की कोई कामयाबी मिल जाए, तो हमारे जहन में आता है पता नहीं अल्लाह ताला को इससे कितनी मोहब्बत है जो इसको इतना कुछ दिया हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारे दरमियान अखलाक इस तरह तकसीम करता है जैसे तुम्हारे दरमियान रिस्क तकसीम करता है, और अल्लाह ताला माल उसको भी देता है जिससे मोहब्बत करता है, और उसको भी देता है जिससे मोहब्बत नहीं करता। यानी जिससे अल्लाह ताला राज़ी होता है उसको भी माल देता है, जिससे नहीं राज़ी होता उसको भी देता है, मगर ईमान सिर्फ उसको देता है जिसको वो पसंद करता है। तो सुभान अल्लाह, अगर आप किसी को देखें को कि उसको ईमान की दौलत मिली हुई है, तो समझ जाइए कि अल्लाह ताला को इससे मोहब्बत है। दूसरी निशानी क्या है कि अल्लाह ताला जिसको पसंद कर लेता है उसको दुनिया में गर्क होने से बचा लेता है। इसी तरह जैसे कि कोई बीमार हो तो उसको पानी से बचाया जाता है, अल्लाह ताला उसको दुनिया से बचाता है। दुनिया से बचाने का मतलब क्या? यानी कि उसको इस दुनिया की दिल फरेबियों में, इस दुनिया की जो शहवात हैं उनमें पड़ने से, रंगीनियों में पड़ने से अल्लाह ताला बचा लेता है। कि इंसान इसी दुनिया में ही डूब जाए, इसी की फिक्र में लगा रहे, इसी के पीछे पागल हो जाए, आखरत की जिंदगी को भूल के दुनिया की जिंदगी में ही अपने आप को मसरूफ रखे, तो अल्लाह ताला उस बंदे से मोहब्बत करता है जिसको उसने दुनिया से बचा के और आखरत के लिए मेहनत करने पे लगाया हुआ। तीसरी बात ये कि अल्लाह ताला जिसको पसंद करता है उसको आजमा लेता है। तो अगर किसी की आजमाइश हो रही हो, कभी मिसाल के तौर पे बीमारी के जरिए, कभी औलाद की किसी परेशानी के जरिए, कभी कोई और गम आ जाता है, किसी प्यारे की जुदाई हो जाती है, कभी कोई माली नुकसान हो जाता है, तो इस तरह की आजमाइशें उसको घेरे रखती हैं। तो ऐसे शख्स को भी समझ लें कि अल्लाह ताला ने पसंद किया हुआ। देखिए बर्तन भी आप जब खरीदने लगते हैं तो उसको ठोक बजा के देखते हैं ना कि ये बर्तन वाकई पक्का भी है या नहीं, इसको खरीदना भी चाहिए या नहीं। तो अल्लाह ताला भी देखता तो है कि वाकई ये मेरी मोहब्बत के काबिल भी है या नहीं, तो उसको आजमा लेता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितनी बड़ी आजमाइश होती है उतना ही बड़ा इनाम भी होता है। अल्लाह ताला जब किसी कौम से मोहब्बत करता है तो उसकी आजमाइश कर लेता है, और जो फिर भी अल्लाह से राजी हो जाए, अल्लाह ताला आजमाइश के बाद उसको अपनी रजा से नवाज देता है, और जो नाराजगी का इजहार करता है अल्लाह ताला भी उससे नाराज हो जाता है। तो आजमाइशों में राजी रहने का मतलब ये है कि इंसान को अल्लाह ताला महबूब बना लेता है। अंबिया अलैहिस्सलाम के ऊपर कितनी आजमाइशें आईं मगर वो अल्लाह ताला से राजी रहे। तो आजमाइश आने के बाद अगर आप किसी को देखते हैं कि वो तब भी अल्लाह से राजी है, तो ये है निशानी इस बात की कि अल्लाह ताला इससे मोहब्बत करते हैं। चौथी बात ये कि अल्लाह ताला जमीन व आसमान में उसकी मकबूलियत में इजाफा कर देता है, उसका जिक्र खैर होने लगता है, उसकी शोहरत अच्छी होती है। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो अल्लाह ताला जिब्राईल अलैहिस्सलाम को आवाज़ देता है और उनसे फरमाता है कि मैं फलां से मोहब्बत करता हूँ, ऐ जिब्राईल तुम भी उससे मोहब्बत करो। जिब्राईल अलैहिस्सलाम उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम आसमान के फरिश्तों से फरमाते हैं कि अल्लाह और जिब्राईल फलां बंदे से मोहब्बत करते हैं, तो तुम भी उससे मोहब्बत करो। और फिर अल्लाह ताला उसकी मोहब्बत को ज़मीन में उतार देता है कि लोग भी उस शख्स से मोहब्बत करने लगते हैं। तो किसी की आप देखें कि अच्छी शोहरत है, लोग उससे मोहब्बत करते हैं, दिल से मोहब्बत करते हैं, तो ये भी एक निशानी है कि अल्लाह ताला उसको महबूब रखता है। पांचवी बात ये कि जिस शख्स में आप ये अमल देखें, समझ लें कि अल्लाह ताला उस शख्स से मोहब्बत करता है। हदीसे कुदसी है, यानी अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि मेरी मोहब्बत उन लोगों के लिए जो मेरी खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तो इस हदीसे कुदसी में अल्लाह ताला की बात है कि मेरी मोहब्बत उन लोगों के लिए जो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं मेरी खातिर। देखिए दुनिया में मोहब्बतें तो बहुत सी हैं। कोई मोहब्बत आप दूसरों से इसलिए करते हैं कि वो आपके रिश्तेदार हैं, कोई मोहब्बत कोई मर्द किसी औरत से करता है क्योंकि एक जज्बा अल्लाह ताला ने रखा है, और जब इंसान को शादी करनी है तो वो अपना मैच ढूंढने के लिए किसी के ऊपर आशिक हो जाता है, किसी को महबूब रखता है, वो भी एक तरह की मोहब्बत है। इसी तरह वालदेन अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं, वो भी एक मोहब्बत है, और एक मोहब्बत होती है जो सिर्फ अल्लाह की खातिर होती है, यानी इसमें कोई और गर्ज नहीं, कोई भी और मोटिव नहीं है। ये मोहब्बत सिर्फ इसलिए होती है कि जो रिश्ता उनके दरमियान है वो अल्लाह ताला की जात है। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों से मोहब्बत करता है। फिर दूसरी चीज इसी हदीस में ये आती है कि मेरी मोहब्बत उन लोगों के लिए जो मेरी खातिर एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। आपको वो हदीस तो याद होगी, जबकि एक आदमी जा रहा था अपने भाई से मुलाकात करने के लिए, भाई से मतलब मैंने दीनी भाई से मुलाकात करने के लिए, अल्लाह ताला एक फरिश्ते को रास्ते में खड़ा कर देते हैं जो उससे पूछता है कि आप क्यों जा रहे हैं उससे मिलने के लिए। तो वो कहता है सिर्फ अल्लाह की खातिर मुझे उससे मोहब्बत है, अल्लाह की खातिर मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ। यानी ये सफ़र जो वो कर रहा है वो सिर्फ अल्लाह ताला की खातिर उस भाई से मोहब्बत की वजह से कर रहा है, और इसलिए वो उससे मुलाकात करने जा रहा है। तो फरिश्ता उस शख्स को खुशखबरी देता है कि तुम अल्लाह की खातिर उससे मोहब्बत करते हो तो अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करता है। तो किसी से मुलाकात सिर्फ इसलिए करना, ये नहीं कि कोई बिजनेस पर्पज़ है, ये नहीं कि कोई रिश्तेदारी है, ये नहीं कि कोई दोस्ती है, अपनी कोई दोस्ती ऐसी पुरानी दोस्ती चल रही है, बचपन की कोई दोस्त है उससे इसलिए मिलने के लिए जा रहे हैं, नहीं सिर्फ अल्लाह की खातिर। क्योंकि अल्लाह की खातिर आप उससे मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह की खातिर उससे मुलाकात करने जाते हैं। तीसरी बात इसी हदीस में ये है कि मेरी मोहब्बत उन लोगों के लिए जो मेरी खातिर एक दूसरे की मदद करते हैं। देख लेना अब इस हदीस के अंदर सारी बातें क्या हैं कि अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिया कि मेरी मोहब्बत ऐसे लोगों के लिए। जब आप किसी को देखें कि वो दूसरों की मदद अल्लाह की खातिर कर रहा है, कोई वोट नहीं लेने उसने, कोई माल नहीं चाहता वो, कोई वाहवा नहीं चाहता, कोई तारीफें नहीं चाहता, सिर्फ अल्लाह की खातिर दूसरों की मदद करता है, तो ये भी एक निशानी है कि अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है, या वो मोहब्बत पा लेता है अल्लाह ताला की इस काम को करने की वजह से। लेकिन हम सोचते हैं कि अल्लाह की मोहब्बत पता नहीं किसी और चीज़ से मिलेगी, हमारे जहन में बहुत सारी और ख्यालात आ सकते हैं, मसलन है तहज्जुद पढ़ना है, मसलन है कि कोई बड़े नेक माँ बाप की औलाद होना, या कोई फलां घराने से मेरा ताल्लुक होना चाहिए, फलां खानदान से होना चाहिए। इनमें आप देखें कोई इबादत की ऐसी बात नहीं है जिसको कि हम सोचते हैं कि इसकी वजह से मोहब्बत अल्लाह ताला की हासिल हो सकती है। ये सब मखलूक के साथ इंसान के अच्छे ताल्लुकात होना, या मखलूक के लिए अल्लाह की खातिर जज्बात रखना, अल्लाह की खातिर उनसे मुलाकात करना, ये अल्लाह ताला को बड़ा महबूब है कि मेरी खातिर इनके ताल्लुकात है, मेरी खातिर ये एक दूसरे की मदद करते हैं। आजकल मदद तो की जाती है मगर उसके पीछे हिडन मोटिव्स होते हैं, छुपे हुए इरादे होते हैं, छुपी हुई नीयतें होती हैं जिनको सिर्फ अल्लाह ताला जानता है। इंसान जुबान से कितना भी कह दे मैं अल्लाह की खातिर आपकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन पीछे क्या है, क्या चीज़ है जो उससे ये करवा रही है, ये अल्लाह ताला ही जानता है। तो जो इंसान वाकई सिर्फ अल्लाह की खातिर मदद करता है, उसको कुछ भी नहीं चाहिए दूसरे से, जरा बराबर भी कुछ सिला नहीं चाहिए, बदला नहीं चाहिए, उसने उससे कोई काम नहीं लेना बाद में, तो ये भी वो लोग हैं जो अल्लाह ताला की मोहब्बत को पाने में कामयाब हो जाते हैं। चौथी चीज इस हदीस में आती है, मेरी मोहब्बत उन लोगों के लिए जिनके दिल बुग्ज से पाक है। अब इसका मतलब दिलों को बुग्ज से पाक करना अल्लाह ताला की मोहब्बत को लाने का जरिया बनता है, कि हमारे दिल बिल्कुल पाक साफ हो। जन्नत की बशारत भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक उन सहाबी के लिए फरमाई थी जो अपने दिल को हर रात लोगों की बुराई से पाक करके सोते थे। जब हम इंसानों में रहते हैं बहुत सारे लोगों की कई बातें हमें हर्ट करती हैं, बहुत सारे लोगों की कई चीजें, कई काम, कई रवैये हमारे लिए तकलीफदेह होते हैं, और फिर हम बोझ पाल के बैठ जाते हैं। वो शख्स अब हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि फलां दिन फलां वक्त में उसने हमें ये बात कही थी और वो मैं भूल नहीं सकती। यही तो बुग्ज होता है, कीना इसी को तो कहते हैं। इंसान दिल में वो बात रखे, चाहे आप उसका जुबान से इजहार नहीं कर रहे, यहां बदला लेने की कोई ताकत नहीं भी है, तब भी दिल में बात रखी हुई है। तो ऐसी गंदगियां दिल में पालने वालों से अल्लाह ताला नहीं मोहब्बत करता, बल्कि बुग्ज से पाक है। इसका मतलब है कि बात आना वो एक फितरी बात है कि इंसान के दिल में किसी की बात आ जाए कि वो उसने ऐसा ऐसा फलां फलां वक्त में किया था, लेकिन इसको दिल में रखना, इसको पालना, इसको छोड़ना ही ना, इसको भूलने की कोशिश ही ना करना, ना इसको दिल से निकालना, ये कोई अच्छी आदत नहीं है। तो लिहाजा यहां से पता चला, जिनके दिल बोझ से पाक होते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको कोई कभी कोई सताता ही नहीं है, मगर वो बोझ रखते नहीं है, निकाल देते हैं, भूल जाते हैं या माफ कर देते हैं, फिर वैसे ही हो जाते हैं जैसे पहले थे। तो इंसान बुख से पाक दिल तभी रख सकता है जब वो दरगुजर कर दे लोगों से, जाने दे, छोड़ दे बात को, भुलाने की कोशिश करे या माफ कर दे। गो के ये काम बहुत मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। इसी तरह पांचवीं चीज, और जो मेरी खातिर एक दूसरे के साथ ताल्लुकात को बरकरार रखते हैं, तो इस हदीस में ये पांच बातें बताई गई कि जो अल्लाह की खातिर एक दूसरे के साथ ताल्लुकात को बरकरार रखते हैं। बाज रिश्ते भी ऐसे होते हैं कि जिनके साथ इंसान की नहीं बनती और तबीयतें नहीं मिलती, मिजाज नहीं मिलते, या उनकी कोई बात चुभती है, या उनके साथ वाकई इंसान मिलना नहीं चाहता क्योंकि जब मिलते हैं वो कुछ ना कुछ तकलीफ देते हैं, मगर चूंकि अल्लाह का हुक्म है कि नहीं ता आपने इनके साथ रिश्ता तोड़ना नहीं है, ये आपके खूनी रिश्ते हैं, इनके साथ कतई रहमी नहीं करनी, तो अल्लाह की खातिर आप उनके साथ ताल्लुकात रखते हैं जबकि आपका दिल नहीं भी चाहता, और उनसे तोड़ के भी आप आराम से जिंदा रह सकते हैं, आपकी कोई मोहताजी नहीं, आपकी कोई मजबूरी नहीं है उनके साथ रिश्ता रखने की, किसी किस्म का आपको उनसे कोई फायदा नहीं है। आप तोड़ना चाहें तो आज तोड़ के खत्म कर सकते हैं और बहुत खुश रह सकते हैं, मगर सिर्फ किस लिए नहीं तोड़ते? अल्लाह की खातिर, अल्लाह की खातिर उन ताल्लुकात को चलाते हैं। तो ऐसे भी लोग अल्लाह ताला की मोहब्बत पा लेते हैं। इसी तरह एक और हदीस से भी हमें ये बात पता चलती है कि किन लोगों के साथ अल्लाह ताला मोहब्बत करता है। अब्दुल्ला बिन उमर से मरवी है, उन्होंने फरमाया कि एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने यही सवाल किया जो हम लोग सोचते हैं कि शायद हम होते तो हम भी ये पूछ लेते कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा शख्स अल्लाह ताला को बड़ा महबूब है, हमारा दिल चाहता है ना कि पता चले, और कौन सा अमल अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंद है, ये भी हमारा क्वेश्चन होता है। तो आप क्या सोचते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया होगा? शायद आप उस जवाब तक पहुंच ना सके, जहन में कई नेकियां आ रही होंगी। देखिए आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में सबसे ज्यादा महबूब अल्लाह ताला को वो शख्स है जो लोगों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला, सुभान अल्लाह, यानी लोगों को नफा देने वाला, लोगों को खैर पहुंचाने वाला, ये इंसान अल्लाह ताला को बहुत महबूब है। कभी आप सोच सकते थे? तो वो इंसान बन जाए जिसकी खैर सब तक पहुंचती हो, बहुत ज्यादा हर तरफ खैर ही खैर हो, वो खैर की चाबी बन जाए, जिधर जाए खैर बने, जिस मजलिस में बैठे खैर का बाइस बने, शर का ना बने, जिनके साथ भी आप रहें, जिस घर में रहते हैं, जिस दफ्तर में काम करते हैं, जिन दोस्तों में बैठते हैं, जिस जगह भी आप हों, मुबारक बन जाए, आपकी खैर लोगों को पहुंचे, लोग महसूस करें कि इस बंदे से हमें खैर मिलती है। खैर पहुंचाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, क्योंकि हर एक बंदे पे डिपेंड करता है कि उसको किस चीज की जरूरत है या किस तरह से आप उसको फायदा दे सकते हैं। किसी को माल के जरिए फायदा पहुंचा सकते हैं, किसी को अपने इल्म के जरिए फायदा पहुंचा सकते हैं, किसी के साथ कोई और खैरख्वाही की बात करके आप उसको फायदा पहुंचा सकते हैं। किसी लोगों की आप कोई उनका फंसा हुआ काम होता है जिसको करवा के आप उसके लिए खैर का बायस बन सकते हैं। तो फायदा पहुंचाने वाले बने कि सोचा करें, मैं जहां जाऊं मैं क्या फायदा दे सकती हूँ इन लोगों को, इन लोगों को मेरे से क्या खैर मिल सकती है, मैं वो खैर देने वाली बन जाऊं। कई लोग शर की चाबियां बन जाते हैं, वो जिधर जाते हैं शर फैलाते हैं, लोगों की बातें देख के दूसरी तरफ पहुंचाते हैं, इधर की उधर, उधर की इधर, लगाई बुझाई करते रहते हैं, बैड माउथ करते हैं दूसरों को, यानी उनकी बुराइयां बयान करते हैं, लोगों की टो में रहते हैं, तजस्सुस में रहते हैं, इसकी बात पता चले उसकी, जिन जिस चीजों के साथ हमारा कोई वास्ता नहीं, ये खैर पहुंचाने वाली चीजें नहीं है। इससे लोग आपसे दूर भागते हैं, उनको आपके साथ बैठ के तंगी होगी, लेकिन अगर वही इंसान बन जाए जो खैर पहुंचाए, यानी लोगों को आपसे जब मिले तो अच्छी बात सुनने को मिले, लोगों को आपसे कोई बुराई ना पहुंचे, ये भी एक खैर पहुंचाने का तरीका है। जब बैठे अच्छी नसीहत करें, अच्छा मशवरा दें, किसी को कोई अच्छी बात बता दें, कोई फायदेमंद बात बता दें, इस तरह इंसान फायदेमंद बनता है। जरूरी ये भी नहीं है कि आप लोगों के भाग भाग के काम ही कर रहे हो तो उससे आप उनको फायदा पहुंचा सकते हैं, अच्छी बात के जरिए भी फायदा पहुंचा सकते हैं। तो फायदेमंद बनने की कोशिश कीजिए और शर को छोड़ दें, दूसरों के लिए शर के जज्बात रखना और दूसरों से बोझ रखना, ये इंसान को लोगों की नजरों में भी गिरा देता है और अल्लाह ताला की नजर में भी। तो देख लें, ये भी लोगों से मुतालिक बातें हैं, जिन जगहों पे हम रहते हैं, जिस माशरे के अंदर हम अपने काम काज करते हैं, उठते बैठते हैं, जिस माशरे के अंदर हम जिंदगी गुजार रहे हैं, उस माशरे को हम क्या दे रहे हैं, अपनी कम्युनिटी में हम क्या सर्व कर रहे हैं, खैर या शर, अपने दोस्तों को क्या दे रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को क्या दे रहे हैं, अपने खानदानों में हम क्या हैं। बाज़ बीबियां तो मशहूर होती हैं कि ये तो अल्लाह की पनाह है कि इनके पास बैठेंगे तो कुछ ना कुछ सुनने को मिलेगा, कुछ ना कुछ बुराई करेंगी, कुछ सुना देंगी, बेइज्जत कर देंगी, गिले शिकवे शुरू कर देंगी, कोई उसकी बात, कोई उसकी बात करेंगी, तो ये खैर बनना तो नहीं है, ये शर बनना है। शर ना बने, खैर बनिए। तो अल्लाह ताला को वो शख्स महबूब है जो लोगों के लिए ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला हो, और अमल में अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल वो खुशी है जो एक मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान को दे या उससे कोई मुसीबत दूर कर दे। आप किसी का दिल खुश नहीं कर सकते, तो उससे कोई मुसीबत दूर कर दे, वो किसी मुश्किल में उसकी मुश्किल आसान कर दे। कुछ आपके पास ऐसे रिसोर्सेज हैं कि आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे उसकी मुश्किल कहीं दूर हो सकती है, उसकी मुश्किल में कोई कमी आ सकती है, जो उसके ऊपर मुसीबत आई भी वो टल सकती है, लेकिन एक बंदा परवाह ही नहीं करता, मुझे क्या, जो मर्जी करते फिरे, जो मर्जी होता फिरे। नहीं, वो बंदा बने जिससे दूसरे की मुसीबत दूर हो सकती हो, या उसका कर्ज अदा कर दे, या उसकी भूख खत्म कर दे। तो तीन चार काम यहाँ पे बताए गए हैं कि जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है कि कोई एक मुसलमान का या तो आप दिल खुश कर दें, ये नहीं मतलब है कि उसको हंसाने बैठ जाएं, कोई लतीफे सुनाए उसको, बल्कि उसका दिल खुश कर दें, तो ऐसी बात करके उसके दिल को खुशी हो जाए, इत्मीनान हो जाए। बाज़ लोग इतनी नेगेटिव बातें करते हैं, दूसरों को परेशान कर देते हैं, बाज़ मुश्किल में भी दूसरों को हौसला देते हैं, सब्र की तलकीन करते हैं, ऐसी अच्छी बात करते हैं दूसरे का दिल मुतमईन हो जाता है। तो खुश करना दिलों का ये हम सीख लें, कैसे मैं इसका दिल खुश करूं जिसके साथ मैं बैठा हूं। इसी तरह मुसीबत को दूर करने की कोशिश करें किसी की, ना कि उसके ऊपर मुसीबत लाने की। कोई मुश्किल में है, उसको मुश्किल से निकाल देंगे तो ये अल्लाह ताला को बड़ा ही महबूब है अमल। इसी तरह किसी को कर्ज में देखते हैं और आप अदा कर सकते हैं, उसको कर्ज से निकाल दीजिए, ये अमल अल्लाह ताला को बड़ा ही पसंद है। पता नहीं अल्लाह ताला किसके किस अमल से राजी हो जाए, अगर वाकई आपने उसको कर्ज से निकाला सिर्फ अल्लाह की खातिर, कि आपको आज ये पता चला कि ये अमल अल्लाह ताला को महबूब है, मेरे फलां रिश्तेदार फलां दोस्त कर्ज में फंसा हुआ, क्यों ना मैं उसकी ये मुश्किल दूर कर दूं, या किसी की भूख खत्म कर दे। आपको पता है ये कोई भूखा है, आपको पता है फलां जगह पर कहत पड़ा हुआ है, आपको पता है फलां जगह पर किसी जंग की वजह से या किसी और वजह से वहां पे बहुत भूख है, उनकी भूख को मिटा दें, ये अमल अल्लाह ताला को बड़ा महबूब है। सुभान अल्लाह, सिलसिला सहीहा की ये हदीस है। लिहाजा हम अपनी तरफ से कोशिश करें कि हम दूसरों के लिए खैर ही खैर बन जाएं, तो हम अल्लाह ताला के महबूब बन जाएंगे। और इसमें किसी से पूछने की फिर ज़रूरत नहीं है कि मैं इस वक्त अल्लाह की नज़र में कैसी हूँ। जब आप ये काम करना शुरू हो जाएं तो देखें, इन अहादीस से हमें पता चलता है कि इंसान अल्लाह ताला का महबूब बन जाता है। आज का जो जिक्र है, ये जिक्र भी वही है जो मैं आपको पहले भी कई दफ़ा बता चुकी हूँ कि इस जिक्र की आपने कसरत करनी है, ये अल्लाह ताला को बड़ा महबूब जिक्र है। और इसकी मैं आपको कुछ फजाइल भी बताती रही हूँ ताकि आप इस जिक्र को अपना लें और इन सारे फजाइल को हासिल कर सकें जो कि हदीस में आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसी बात ना बताऊं जिसके जरिए तुम अपने पहलों के दर्जों को पा लो, अपने से पहले के दर्जे को पा लोगे और बाद वाले तुम्हारे दर्जे को नहीं पहुंच सकेंगे। यानी इतने ऊंचे मकाम पा सकते हो आप, सिवाय उस शख्स के जो इस तरह का अमल करेगा। पहलों के दर्जे जो बुलंद दर्जे थे, उन दर्जों को आप भी पहुंच सकते हैं, और कोई भी आपके इस दर्जे को नहीं पहुंच सकता सिवाय इसके कि वो भी अगर ये अमल शुरू कर दे। हर नमाज के बाद तुम सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये तमाम अज़कार 33 टाइम्स, 33 दफ़ा कहा करो। ये मुस्लिम की रिवायत है, ये दर्जों को बुलंद करने वाले अमल हैं और ये बहुत आसान है। वैसे भी आप जब नमाज से फारिग होके मुसल्ले पे जितनी देर बैठे रहते हैं तो एक तो इन अज़कार को करने का मौका मिल जाता है, दूसरे ये कि आप फरिश्तों की दुआएं पाते हैं। ज़हन में रखिएगा, अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कुरान करीम में कि अल्लाह ताला का जिक्र कसरत से करने वालों में हो जाए। ए ईमान वालों, तुम अल्लाह ताला का जिक्र कसरत से किया करो, ये तो अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है। अब हम सोचते हैं ना कि हम कैसे कसरत से जिक्र करें, तो इमाम नववी यही फरमाते हैं कि जिसने सुबह शाम के अज़कार किए और नमाज के बाद के अज़कार किए, जैसे मैं आपको ये जिक्र बता रही हूँ, और सोने के अजकार की पाबंदी की, यानी रोजाना किया इन अजकार को, तो वो अल्लाह ताला को कसरत से जिक्र करने वालों में शुमार होगा। तो अगर आप इतना भी कर लेते हैं कि सुबह शाम के अजकार की पाबंदी करें, सुबह के अजकार कब होते हैं? फजर की नमाज पढ़ने के बाद। शाम के अजकार कब होते हैं? असर के बाद, यानी तुलुए शम्स से पहले और गुरूबे शम्स से पहले। उस वक्त के अजकार करना जरूरी है, और नमाज के बाद के भी अजकार। ये नहीं कि नमाज जू ही पढ़िए, सलाम फेरा तो उठ के भागे। और सोने के अजकार, इनकी पाबंदी कीजिए। तो आप अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बंदों में भी शामिल हो जाते हैं। अलामा सादी फरमाते हैं कि शुक्रगुजारी की किस्मों में सबसे अफजल तरीन किस्म ये है कि इंसान अल्लाह ताला का जिक्र कसरत से करे। तो अल्लाह ताला का जिक्र करने से आप क्या बन जाते हैं? शुक्रगुजार बंदों में शामिल हो जाते हैं। आज के जो दुआ है वो भी अल्लाह ताला की मोहब्बत का सवाल है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका वल अमल अल्लज़ी युबल्लिगुनी हुब्बक। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे तेरी मोहब्बत का सवाल करता हूँ, और हर उस शख्स की मोहब्बत का जो तुझसे मोहब्बत करता हो, यानी उनकी मोहब्बत भी मेरे दिल में डाल दे जो तुझसे मोहब्बत करते हैं, और मेरे दिल में भी अपनी मोहब्बत डाल दे, और उस अमल का जो मुझे तेरी मोहब्बत तक पहुंचा दे। एक आखिरी बात ये देखने की कि अल्लाह ताला मुझसे मोहब्बत करता है या नहीं। तो उलमा कहते हैं कि जो ये देखना चाहता है कि अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है या नहीं, या अल्लाह ताला उससे कितनी मोहब्बत करता है, वो ये देख ले अपने दिल में कि वो अल्लाह से कितनी मोहब्बत करता है। जितनी मोहब्बत आप अल्लाह ताला से करते होंगे, उतनी ही अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करता होगा। तो हम अगर अपने दिल का पहले जायज़ा ले लें, जैसे कि हमने कल बात भी की थी और मोहब्बत की निशानियां देखी थी, अल्लाह ताला की मोहब्बत हमारे दिल में कितनी है, तो उसके मुताबिक ही फिर हम ये फैसला कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमसे कितनी मोहब्बत करता होगा। अल्लाह ताला हम सबसे कबूल फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।